ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हम ले रहे हैं, स्वमान से निगेटिविटी पर विजय। संसार में निगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव सभी के ऊपर हो रहा है। न चाहते हुए भी निगेटिव विचार बहुत आते हैं, आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने विचारों को, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे स्वमान के बल से। हम इन निगेटिव विचारों को, व्यर्थ विचारों को कुछ भागों में बांट लेते हैं। सभी के पास ये व्यर्थ विचार आते ही हैं। हाँ माता, इधर इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, और इधर बढ़ो, खाली जगह भर लो इधर की, तो उधर से आते जाएंगे व्यर्थ विचार। पहली एक चीज व्यर्थ के संकल्प, दूसरी बात अनावश्यक संकल्प, वो भी व्यर्थ ही होते हैं पर अनावश्यक। तीसरे साधारण संकल्प, साधारण संकल्प। चौथे संकल्प होते हैं आवश्यक संकल्प। कामकाज में हम रहते हैं, जो कामकाज के आवश्यक संकल्प हैं वो हमारे मन में उठते हैं। और पांचवे होते हैं निगेटिव, हर बात को निगेटिव रूप से लेने की आदत। किसी ने बहुत अच्छा काम भी किया हो तो भी क्या संकल्प उठेगा मन में, आज तो अच्छा काम किया, कल तक तो खराब करते थे। निगेटिव संकल्प आएगा, यह संकल्प आएगा, देखा आज तो अच्छा किया, देखेंगे कितने दिन तक करेंगे। निगेटिव सोचने की आदत, बहुत निगेटिव सोचता है मनुष्य, उसके हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए क्यों हमें निगेटिव विचारों को छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, बोलो क्यों छोड़ना है। सब जानते हैं क्या नुकसान होता है उनसे, उत्तर दो। माताओं के पास ज्यादा निगेटिव रहता है, रहता है या नहीं, रहता है। क्या नुकसान होता है, अशांति होती है, योग नहीं लगता है, हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं, और निगेटिव सोचते सोचते टेंशन बढ़ती जाती है, नुकसान ही नुकसान है। निगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है। इसके अलावा हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी है, खराब वाइब्रेशंस हैं। जो नुकसान होंगे, जो निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, माताएं घर में ध्यान दें, घर में बैठकर अगर आप निगेटिव सोच रही हैं तो आपके घर का वातावरण कमजोर पड़ रहा है। उस कमजोर वातावरण में बीमारियां बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगा, किसी को क्रोध आएगा, बिना मतलब की समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए घरों में विशेष रूप से भाई भी ध्यान दें, चाहे अपने ऑफिस में जहां आप काम करते हैं वहां पर अगर आप निगेटिव बहुत सोचते हैं तो चारों ओर के माहौल में निगेटिव वाइब्रेशन फैल जाएंगे, जो आपके लिए कष्ट कारक होंगे। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान देंगे सभी, जानने योग्य है, हमारे चारों ओर क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, अगर हमारे मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं तो हम उस निगेटिव एनर्जी को भी ग्रहण कर रहे हैं। मन नाजुक हो रहा है। मान लो किसी को बहुत क्रोध आता है, क्रोध किसी बात पर आ जाएगा, मन में उल्टे विचार चलेंगे तब आएगा। तो क्रोध आते ही मन कमजोर हो गया और जो हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी है वो हम में प्रवेश करने लगी। इसलिए क्रोध पर सभी को बहुत ध्यान देना है। ये क्रोध से बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे ही आप किसी बात से परेशान हैं, आप किसी बात पे ज्यादा सोच रहे हैं, तो मन के कमजोर होने के कारण बाहर के निगेटिव वाइब्रेशंस आपके मन में प्रवेश करते रहेंगे। वो बुद्धि को कमजोर करेंगे, मन को कमजोर करेंगे, वो संस्कारों पर प्रभाव डालेंगे, उसका दुष्प्रभाव हमें अपने जीवन में दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप देख सकते हैं जो मन से कमजोर हैं, उन्हें बाहर की बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। आजकल कौन सी बीमारी का ज्यादा डर है दुनिया में? माताएं तो नहीं जानती होंगी, भाई जानते होंगे, स्वाइन फ्लू। और भारत में अब क्यों ज्यादा डर हो गया? कि उसके वायरस दूसरों को बीमार करने लगे, उसके पास जो व्यक्ति रहेगा वो भी बीमार हो जाएगा, तो सेवा कौन करेगा? तो कहा उससे 2 मीटर दूर पर रहना है। 2 मीटर दूरी से तो पानी नहीं दिया जा सकता, या पाइप से पिलाएंगे पानी। तो जिनके मन कमजोर हैं, उनको ये वायरस जल्दी प्रभाव डालते हैं। ऐसा भी समय आने वाला है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, कैसा समय? कि कहीं बीमारी फैलेंगी और बीमारी के वायरस कीटाणु हवा के माध्यम से सारे संसार में फैल जाएंगे। हवा ले आएगी अपने साथ वायरस को और बीमारियों का प्रकोप होने लगेगा। तो सबको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। हवा भी बिल्कुल दूषित हो जाएगी, जितनी दूषित अब है इससे बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगी। श्वास से ही बहुत वायरस बीमारियों के अंदर जाने लगेंगे। हमें मन को शक्तिशाली बनाना है। साधारण संकल्प भी हमारे खत्म हो जाएं, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएं, चिंताओं के संकल्प समाप्त हो जाएं, पास्ट का चिंतन समाप्त हो जाए, भविष्य का चिंता किस रूप में होती है, भविष्य की क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंता के संकल्प भी समाप्त हो जाएं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। कहने से तो समाप्त नहीं हो जाएंगे ना। हम किसी को कहते पास का ना सोचो, अरे वो तो बीत गया, छोड़ो ना उसे, लेकिन वो उसके मन से जा नहीं रहा है। कल ऐसा ही एक केस मेरे पास आया, कोई बहन, तो कहा मुझे तो भूलते ही नहीं पास, कोई ऐसी घटना हो गई है मेरे साथ कुछ समय पहले, हालांकि साल बीत गया, लेकिन वो ऐसी घटना हो गई कि जब मैं योग में बैठती हूँ, जैसे ही मैं काम काज पूरा करके शांत में बैठूंगी, बस वो घटना याद आएगी और मैं दुखी हो जाती हूँ। देखिए घटना को घटे हुए 2 साल गुजर गए, उसके बीच में अब तक कितनी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन पास अपनी ओर खींच रहा है आत्मा को। हमें इन संकल्पों से मुक्त होना है। क्या करेंगे इसमें? हमें ज्ञान का बल भी बहुत काम आएगा, श्रेष्ठ स्मृतियों का बल काम आएगा, योग अभ्यास काम आएगा। योग अभ्यास में भी विशेष ध्यान देंगे सभी, निराकारी स्थिति, जिसको पास बहुत याद आता हो, जिसका दुख भरा कड़वाहट से भरा हुआ पास बीता हुआ समय वर्तमान को भी जहरीला कर रहा हो, दुखी कर रहा हो, ध्यान दें इस बात पर, जैसे ही हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, हमारे निराकार स्वरूप में सभी संकल्प समा जाएंगे। और निराकार अभ्यास, निराकारी स्वरूप का अभ्यास एक बहुत सरल तरीका आप ख्याल में लाएं। कभी भी दिन में बैठें और संकल्प करें, मेरा शरीर छूट गया, तत्व तत्वों में विलीन हो गए और बच गई मैं निराकार आत्मा। अपने निराकार स्वरूप को देखने लगे, इसको ही कहते हैं निराकार स्वरूप में स्थित हो जाना। संकल्प के साथ निराकार बनेंगे, बिल्कुल अंतिम दिन आ गया सृष्टि का, शरीर समाप्त हो गए, बच गई मैं निराकार आत्मा। आपको अनुभव होने लगेगा, आप इस स्थिति में 10 सेकंड रहें, फिर 30 सेकंड रहें, फिर 1 मिनट तक बढ़ाएं समय को, तो आपको दिखाई देगा, अनुभव होगा संपूर्ण बीता हुआ समय, उसके संकल्प, उसकी दुविधाएं उलझने इस निराकारी स्वरूप में समाने लगी। इनमें 2-4-5 बार कर लेंगे, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा तुम पास से बिना मतलब ही परेशान हो रहे थे, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा हम अपने पास के प्रभाव को हल्का करें। कैसे करेंगे? एक संकल्प करें सभी, बहुत अच्छा, उसे स्वीकार कर लें। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो बोलो आगे, वो ड्रामा में था। संकल्प चलता है ना, क्यों हुआ ड्रामा में? जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमारे ही किसी न किसी पाप कर्म का फल था। समाप्त हो गया, हमने ही कोई गलती कर दी थी, उसका परिणाम हमारे सामने आ गया था। अब वो पूरा हो गया, पाप समाप्त हो गया, हम हल्के हो गए हैं, इसलिए उसको क्यों याद करें? वो तो पूर्ण हो गया। अच्छे संकल्पों से पास की बातों को हल्का करो, कि जो एक बार हो गया है वो इस ड्रामा में दोबारा नहीं होता। वो पूरा हो गया, उसे याद नहीं करना है। संकल्प दो अपने को। देखो, कई लोग बहुत दुखी होकर एक प्रश्न करते हैं, क्या ड्रामा को नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है, माताओं में है ताकत ड्रामा को बदलने की, नहीं है किसी में? भाइयों में नहीं बदला जा सकता? क्यों? बाबा तो कहता है तुम संसार को बदल सकते हो, ड्रामा को क्यों नहीं बदल सकते? बोलो, बना बनाया खेल है। तो मैं ऐसे व्यक्ति से जो मेरे से प्रश्न पूछता है, मैं उससे प्रश्न करता हूँ, आप ड्रामा को बदलना क्यों चाहते हो भाई? तो उसका उत्तर तो जानते हैं हम। कहता है मेरे जीवन में ये घटना इतनी खराब घटी, मैं चाहता हूँ ये अगले कल्प में न घटे। कल भी मुझे एक माता ने कहा, और सारा ड्रामा अच्छा, बस वो एक घटना न घटे तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं ऐसे में उनसे पूछता हूँ कि उस घटना के बाद ही आप बाबा के पास आए हैं? हाँ। वो ऐसी दुख देने वाली घटना थी, हम इतने दुखी हो गए कि शांति की खोज करने लगे तो बाबा के पास आ गए। अब रहस्य समझ में आ गया होगा आपको, अगर वो घटना न होती तो भगवान भी न मिलता। अगर आप चाहते हो वो घटना दोबारा न हो तो भगवान भी नहीं मिलेगा, पसंद है? कहा नहीं, बाबा तो चाहिए, तो कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी ना भगवान प्राप्ति के लिए। ऐसे संकल्पों से अपने को हल्का करें। हल्का करना है, जो बीत गया वो 5,000 साल बाद ही आएगा, हम अभी से उसका चिंतन क्यों करें? घटना 6 मास पहले हुई थी, अब वो देखो 5,000 साल में से 6 मास कम में फिर से होगी, क्यों उसे अब से हम बार बार याद करें? संकल्प कर लें हमें पास के चिंतन से अपने वर्तमान के सुखों को नष्ट नहीं करना है, अपने से बात करेंगे, अपने को सुंदर चिंतन देना है सबको। जो आत्मा अपने को जितना सुंदर चिंतन देगी उतना ही ये पास का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। कई माताएं थकी हुई हैं जीवन में, बुजुर्ग माताएं बैठी थकी हुई नजर आ रही हैं, थके थका दिया है, किसी को बच्चों ने थकाया है, किसी को बीमारियों ने थकाया है, किसी के जीवन में बुरी बुरी घटनाएं हुई उसने थकाया है, थका दिया ना, समस्याओं ने थकाया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर ने थकाया, किसी को शुगर ने थकाया, थकाता है ना, किसी को घर में, देखो एक बहुत अच्छी गल बात, जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं उनके व्यवहार ने थका दिया है। हम इस थकान से ऊपर निकलेंगे, अपने मन को सुंदर विचार दें, स्वमान दें, स्वमान से पास भूल जाएगा। स्वमान में बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। एक बहुत अच्छा स्वमान दिया, याद दिलाया, स्मृति दिलाई, तुम कैसे पवित्र देवी देवता थे, याद आया सबको, कैसे पवित्र देवी देवता थे, बच्चों को याद आया कैसे देवता थे, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है ऐसे, जिनके दर्शन करके ही मनुष्य को शांति मिल जाती है ऐसे, ऐसे देवता थे हम, ऐसी पुण्य आत्माएं पवित्र आत्माएं थे हम, जिनके मंदिरों में जाते ही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिनका नाम स्मरण करने से ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, थे ऐसे सभी। वो गया है हमसे हमारा वो स्वरूप, हमारी वो दिव्यता, हमारा वो तेज, हमारी प्योरिटी, हमारी शक्तियाँ हमसे चली गई हैं। बाबा याद दिलाता है तुम ऐसे थे फिर बन जाओ, और बाबा विधि बता रहे हैं हम फिर वैसे ही बन जाएं। तो अपने उस पास्ट को याद करें, थकान उतारने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप सबको अनुभव होगा। माताओं की बात करूं मैं, माताएं सामने जाकर बैठी हैं, आपके घर में मेहमान आए हों, आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारा भोजन बनाया हो, थक गए हों आप, जब मेहमान भोजन खा रहे हों आपके भोजन की बहुत महिमा कर दें, वाह दही वड़े तो कितने टेस्टी बनाए हैं, पुलाव भरे तो खाने को दिल कर रही है, ज्यादा खा लें, कैसे बनाया आपने, ये सुनते ही सारी थकान समाप्त हो जाएगी ना। अच्छे विचार, अच्छी बातें सुनकर थकान समाप्त हो जाती है। और कोई ये कहते क्या खाना बनाया, खाना भी नहीं बनाना आता, इससे अच्छा तो हमारे घर में बनता है, तो और थकान हो जाएगी, डबल हो जाएगी थकान। बाबा ने हमें क्या कहा, हम अपनी थकान उतारे एक बात से, हमारी 5,000 साल की लंबी यात्रा पूरी होने को आई तो क्या हुआ, भगवान स्वयं हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया, आया सभी के घर में, माताओं के घर में आया, क्या खिलाते हो उसे, अब उसके लिए भी कुछ बनता है या नहीं, लौकिक मेहमान आएंगे तो बहुत माल बनाएंगे, और भगवान मेहमान बनकर आया है, माताओं से पूछता हूँ क्या खिलाते हैं उसे, क्या पता ही नहीं वो क्या खाएगा, निराकार है खाता ही नहीं, खाता तो है, ऐसे नहीं बाजार से फ्रूट ला के लगा दिया भोग, वो भोग इतना स्वादिष्ट नहीं होता। प्यार से बनाया जाएगा ना, उसमें स्वाद भावनाएं सब कुछ भरा जाएगा। तो सुंदर विचारों के द्वारा निगेटिव विचारों को समाप्त करेंगे। दूसरी बात, सभी एक काम करेंगे, अब मुरली तो सबको सुनने को मिलती है, अव्यक्त भी मुरलियां बहुत, साकार मुरलियों में भी बहुत गुह्य ज्ञान है। एक अलग डायरी आप अपनी बनाएं, जिसमें आप 50 पावरफुल पॉइंट्स लिखें मुरलियों के। ऐसे पावरफुल पॉइंट्स जिन्हें याद करते ही सोई हुई आत्मा जग जाए, जिन्हें याद करते ही निराशा के अंधकार में डूबी हुई आत्माएं प्रकाश में आ जाएं। ऐसे 50 सुंदर महावाक्य आप लिखेंगे। लिख सकती हैं माताएं? 50 नहीं लिखना है, 10 लिखो बहुत पावरफुल, रोज उन्हें पढ़ो, याद करो, मन का बोझ उतरता जाएगा। ऐसे बहुत सुंदर महावाक्य हैं बाबा की मुरलियों में, जिनको याद करते ही आत्मा का तेज बढ़ जाता है। मलिनता, दबाव, धुंधलापन सब लोप हो जाता है। मैं आपको कुछ बातें सुना देता हूँ, आप मुरलियों से ढूंढ ढूंढ कर, मुरली सुनते ही हैं उनसे ही मिल जाएंगी। जो भी अच्छी पॉइंट मिले उसको अलग अपनी एक पर्सनल डायरी में नोट करो, रोज पढ़ लो, 5 मिनट का काम होगा, चेतनता आ जाएगी। सवेरे उठ के अपने को याद दिला दो, मेरी एक बहुत प्रिय पॉइंट आपको भी बहुत प्रिय लगेगी। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। पसंद है माताओं को? कौन सोचेगा हमारे लिए? वो सोचेगा जो सर्वशक्तिवान है, जो सारे संसार का बोझ हल लेता है। मैं भक्ति की एक किताब में एक छोटी सी कहानी पढ़ा करता था, शुरू में मुझे बहुत प्रिय लगती थी, इसी से जुड़ी हुई है। एक भक्त जंगल में एक पेड़ के नीचे परमात्मा के ध्यान में मगन बैठा है, शुद्ध बुद्ध भूली हुई है, वो मगन है उसके चारों ओर क्या हो रहा है ये उसे पता नहीं। उस पेड़ पर आ जाता है कहीं से बहुत भयानक सांप, वो देखता है नीचे व्यक्ति बैठा है, उसने अपने को लपेटा पेड़ में और मुंह नीचे चलाया उसको काटने के लिए, ये दिखाया उसने। तो ऊपर से विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। विष्णु ने देखा, अच्छा मेरा भक्त जो मेरी याद में मग्न है उसको सांप काटना चाहता है, वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ा, सांप को खत्म कर दिया। तो जब मैंने बाबा की ये बात सुनी, तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, दिल खुश हो गया। समर्पण भाव, तुम कहो बाबा सब कुछ तेरा, तो बाबा भी क्या कहेगा ऊपर से, बच्चे मेरा सब कुछ तेरा। और हम ही नहीं कह रहे हैं दिल से, तो बाबा का भी वैसा ही उत्तर आएगा। बाबा की आवाज सुनो दिल में, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम संसार में माया के युद्ध में समस्याओं के कलयुग में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, केवल केवल याद रखो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है, समस्याएं हल्की हो जाएंगी। केवल याद रखने से कि वो साथ है, एक है योग लगाना, उसमें किसी को कठिनाई हो सकती है, बुद्धि स्थिर न हो, मन भटकने लगे, लेकिन बाबा साथ है, ये नशा, ये फीलिंग हमें अनेक चीजों से मुक्त करेगी। ऐसे बाबा थे, बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य हैं। एक बहुत अच्छा महावाक्य और याद दिला दूं आपको, मुरलियों में अभी अभी भी आ चुका है, जो बच्चे साक्षीपन में स्थित रहते हैं वो एक मास का काम एक घंटे में कर सकते हैं। हमें अपनी संकल्प शक्ति के महत्व का रियलाइजेशन होता है कि हम साक्षी नहीं रहते, हम क्या क्यों में रहते हैं, हम तेरे मेरे में रहते हैं, हम उलझनों और परेशानियों में रहते हैं, इससे हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। मन की शक्तियाँ नष्ट होने से हमारी कार्य क्षमता कमजोर पड़ जाती है। सभी माताएं अनुभव करके देखें, आपको यदि भोजन बनाने में 2 घंटे लगते हैं, आप बिल्कुल आनंद में प्यार से बाबा को याद करते हुए समान में स्थित रहकर भोजन बनाओ, 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन में भोजन बनाएंगे, इसके बाद ये काम करना है, किसी से लड़ाई हो गई उसके विचारों में भोजन बनाएंगे, 2 घंटे का काम 2.5 घंटे में होगा, थक भी बहुत जाएंगे। करके देख लें अनुभव सभी, मन जितना शांत है कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ी हुई है। ऐसे ही बाबा ने एक दूसरी बहुत गहरी बात कही, तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो, सारी समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। जागृति देने वाले महावाक्य हैं, याद करें, जो बच्चे स्वमान की सीट पर बैठ रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है। कैसी माताएं या भाई जो अपने को बंधन में महसूस करते हैं वो ये जान लें, स्वान का जितना अभ्यास करेंगे बाबा जिम्मेदारी रखेगा, बाबा हमारे कार्य संवारेगा, बाबा आपके बंधनों को समाप्त करेगा। और बाबा ने कहा जो बच्चे अपसेट रहते हैं, अपसेट समझते हैं माताएं, परेशान दुविधा में, कभी ऊपर कभी नीचे, उनके जिम्मेदार वो खुद, बाबा उनका जिम्मेदार जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं। तो बहुत अच्छी सीट दी है बाबा ने हमें, इसको बाबा पोजीशन कहते हैं, तुम्हारी पोजीशन है ये, तो अपोजीशन समाप्त हो जाएगी। कितना सुंदर महावाक्य है, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहो, स्वमान में रहो, तो अपोजिशन माना विरोध समाप्त हो जाएगा, कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा। ऐसे सुंदर महावाक्य, एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने क्लासेज में बहुत सुनाई है, अभी पिछले दिनों सरकार मुरलियों में आई है, यदि तुम सबको आत्मा देखो तो तुम्हारे बंधन कट जाएंगे। कितनी गुह्य फिलोसफी है, आत्मिक दृष्टि रखने से बंधन कटते हैं, दैहिक दृष्टि रखने से बंधन बढ़ते हैं। परिवारों में किसी के युगल किसी को बंधन डालते हैं, किसी के बच्चे किसी को बंधन डालते हैं, किसी के माँ बाप किसी के सास ससुर किसी को बंधन डालते हैं। आत्मिक दृष्टि से देखो सबको, बंधन कटने लगेंगे। ये सुंदर जागृति देने वाले बाबा के महावाक्य हैं। ऐसे 50 भी आप लिख सकते हैं, कम से कम 10 लिखकर रोज सवेरे याद किया करें, तो उसका प्रभाव जीवन पर बहुत ही सुंदर आएगा। स्वमान की बात हमने की, कुछ स्वमान सभी अपने अपने चुन लें और स्वमान के बल से व्यर्थ को समाप्त करें। मैं आपको बाबा का एक ऐसे ही और बहुत अच्छा महावाक्य याद दिला दूं, ये गुह्य महावाक्य है, स्मृति स्वरूप रहने से पास्ट की स्मृतियां भूल जाएंगी। जितना अच्छी स्मृतियों में रहेंगे उतना पास्ट की बुरी स्मृतियां भूल जाएंगी। मैं महान आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे बीता काल भूलता जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज आप याद करें अपने जीवन में, ये थोड़ी बड़ी चीज है, जो बहुत अच्छा कुछ प्राप्त कर रहे हैं ये उनके लिए है कि संसार को हमारी प्रकाश की बहुत बहुत जरूरत है। महसूस भी करते होंगे आप संसार में रहते हुए दुख बहुत बढ़ रहा है, संसार समस्याओं में उलझता जा रहा है, टेंशन का तो जैसे साम्राज्य हो गया है, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, पाप कर्म बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत पाप बढ़ रहे हैं। बाबा ने कभी कहा है विनाश काल में ऐसा समय आएगा कि सबको महसूस होगा कि सरकार नाम की भी कोई चीज नहीं है, केवल वो आत्माएं जिनके पास परमात्म शक्तियां हैं अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। विकराल काल होगा विनाश काल, सब कह तो देते हैं ना विनाश होगा, जल्दी हो, बहुत देर हो गई, पता नहीं कब विनाश होगा, लेकिन जिस दिन विनाश प्रारंभ हो गया उस दिन शायद सब कहने लगे बाबा विनाश न करो, दुनिया ही अच्छी थी इससे तो। विनाश बहुत भयानक काल होगा, इसलिए हम सबको सकाश देनी है संसार को। कौन कौन देते हैं आप में से सकाश, हाथ उठाओ जरा। अच्छा है तो बहुत भाई बहने हैं, बाकी सब लेते हैं, बाकी सब नहीं देते, लेते हैं। बाबा से तो लेना ही है पर संसार को देना है। तो मैं जो आपको बात कह रहा था वो ये है, जिन्हें बहुत महान कार्य करने हैं उन्हें अपना टाइम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे संकल्पों में, उलझनों में नहीं बिताना चाहिए। सब अपने मन में एक संकल्प गुंजाने लगे, हमारे महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें संसार को बहुत कुछ देना होगा। देना है, देना है तो बातों से और व्यर्थ के संकल्पों से ऊपर उठ जाएं। अगर हम अपने में दृढ़ चले आए हमें व्यर्थ में नहीं रहना है, व्यर्थ बुरी चीज है। गलती दूसरा करे चिंतन हम करते रहे, कमजोरी दूसरे की हो दूसरे को देखकर परेशान हम होते रहे, ये समझदारी नहीं है। उठ जाएंगे इससे अपने में एक महान चिंतन की शुरुआत करें, और महान चिंतन प्रारंभ होता है स्वमान से। देखो आप सभी भाई बहने जो ग्रस्त में रहते हैं एक चीज के बहुत अच्छे अनुभवी हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं जब परीक्षा आती है कितनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और भी आप जानते हैं, जिन बच्चों को हायर एजुकेशन लेनी है, अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, कंपटीशन देने हैं, देखो वो 6 मास 1 साल कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक नौकरी पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलेगी, चलो 25,000 मिली, 30,000 मिली, किसी को और ज्यादा मिली। हम उनकी मेहनत से प्रेरणा लें, एक अल्पकालीन क्षणिक प्राप्ति है, वो भी कब चली जाए पता नहीं। स्टूडेंट्स दिन रात एक करते हैं, और भगवान हमारे सम्मुख बैठकर कह रहा हो मैं तुम्हारे लिए विश्व की राजाई लेकर आया हूँ, ले लो। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति का एहसास है, एक जन्म के लिए नहीं तीन युग की बाजी पूरी है, सत्युग त्रेता द्वापर, और वही संस्कार कलयुग में भी काम करेंगे। अच्छे संस्कार जन्म जन्म का भाग्य बनाने का अवसर हमारे द्वार पर आया है, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं वो अपने को अनेक तरह के व्यर्थ से बचाएं, बचा सकते हैं, ये अपने हाथ है, बचा सकते हैं या नहीं, चाहे व्यर्थ की बातें हो चाहे व्यर्थ का चिंतन हो, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता। एक परिवार आज मिला, बाप बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उसको, दो बच्चे बहुत बड़े भी नहीं है, लड़का 11वीं में लड़की 9th में, बच्चे दोनों थोड़े कम होशियार हैं, बाप उनकी टेंशन में उनकी चिंता में आधा हो गया, समझ गए ना, आधा मेंटली आधा हो गया। मैंने उसको कहा अगर तुम पूरे हो गए तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, उसके जो धर्म पत्नी थी युगल की वो ज्ञान में नहीं है, मिलने आए परेशानी से, दिमाग कैसा हो गया है, अटैक आने लगा है ब्रेन पर, नाम बताया उसने मेडिकल का सब था, ये अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक, पैनिक ठंडा हो जाता है शरीर, ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता, अंधेरा छा जाता है। मैंने उससे पूछा मान लो तुम समाप्त हो गए सब बच्चों का भविष्य सब क्या होगा, तो उसकी पत्नी कहने लगी मैं भी इनको यही समझाती हूँ। फिर मैंने कहा कि हर बच्चा पढ़ाई में होशियार तो नहीं हो सकता ना, अगर 100 स्टूडेंट हैं तो 100 में से 10 तो बहुत होशियार होंगे, दूसरे 20 भी थोड़े अच्छे होंगे, बाकी कुछ सेकंड क्लास होंगे, कुछ थर्ड क्लास होंगे, कोई पास ही होंगे मुश्किल से, इस बच्चे को तुम दूसरा काम सिखा दो, पढ़ाई छुड़वाओ। तो उसने कहा, ये बात उसको अच्छी लगी, ये सचमुच नहीं पढ़ता लेकिन इस काम में इसको बहुत रुचि होती है, एक काम बताया उन्होंने, तो मैंने कहा इसको लगा दो। उन्होंने धीरे धीरे लगाना शुरू किया और आप हो जाओ टेंशन से फ्री। सोचना है हमें जिन बच्चों की टेंशन में आप परेशान हो रहे हैं, क्या उन्हें अपने भविष्य की भी चिंता है या नहीं, सोचो। और क्या आपके चिंता करने से उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए चिंता आपको भी रोगग्रस्त करेगी, बच्चों का भी मनोबल गिराएगी, आप उन्हें निराश करेंगे ना रोज कुछ कुछ कहके, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं, पता नहीं क्या करोगे जिंदगी में, हमारे कुल का नाम खराब करोगे, गलत गलत बोलकर बच्चों में भी निराशा और अशांति के संस्कार आ जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं, रास्ता निकालो, समस्याओं में उलझने की बजाय सुंदर तरीका है समस्याओं का समाधान सोचा जाए। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या किया जाए उनके लिए विचार करें, उनको इस काम में नहीं इस काम में लगाया जाए। बहुत सारी कन्याएं होती हैं, माँ लेकर आती है बच्ची ने 10वीं क्लास की है, पढ़ती नहीं है, मैं बहुत कहा पढ़ो, मैं बच्ची से बात करता हूँ पता चलता है बच्ची होशियार नहीं है, उसको पढ़ना बहुत भारी लगता है, मुसीबत लगती है, तो उसको डंडे मार मार के क्यों भी पढ़ा रहे हो, उसको और कुछ सिखाया जा सकता है ना? नहीं, हमारे पड़ोस के बच्चे ने MCA कर लिया, BBA कर लिया, अभी MBA करने वाली है, हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, देगा पड़ोसी के बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे डिग्री ले लिया, हमारी बच्ची 10वीं से आगे नहीं पढ़ती, ये परेशानी क्या कल्याणकारी है? सभी विचार करें माताएं, इसमें परेशान होने की बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जिन्हें सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं आप सबको कहूंगा एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने अपने घरों में कोई भी माताएं या भाई दबाव का माहौल न बनने दो, सफोकेशन, घुटन, कैसे होती है घुटन, मान लो बाप को बहुत गुस्सा आता है तो जैसे ही बाप घर में आएगा बच्चों का क्या हाल होगा, सब डर जाएंगे, पापा आ गए, किताब खोल के बैठ जाएंगे, देख लो पढ़ रहे हैं भाई, तो झूठ मूठ करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। कोई कोई तो बच्चे ठीक होते हैं, किसी किसी में डर दिल में बैठ जाता है, जो आगे चलकर उनके जीवन के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आज एक ऐसा ही केस मेरे पास आया, उसको बहुत तकलीफ थी। वो हमारे यहाँ भी नहीं आया था, दिल्ली से आया घूमने, पांडव भवन गया, उनको समस्या बताई, मेरे पास भेजा गया अंसरोर में। तो मैं उसके कारण पूछता रहा कि तुम्हारी समस्या का आखिर कारण क्या है। उसको समझ में ना आए, टेंशन होगी, कुछ और होगा। फिर बताया कि मेरा बाप बचपन से बहुत गुस्सा करता था और मैं डरा डरा रहता था, बस ये था उसकी समस्या का कारण। अब बाप के क्रोध ने बच्चे में इतने भय के संस्कार भर दिए कि वो खुद बहुत बड़ा हो गया है 40 साल का, लेकिन भयभीत बाप अब नहीं है, वो गया, लेकिन भय का संस्कार उसको जीवन का सुख नहीं लेने दे रहा है। सब भाई विशेष रूप से ध्यान दें, ये पाप हो गया ना बहुत बड़ा। अब देखिए, उसके बाप का क्रोध इसको भयभीत कर रहा है, इसका भय इसके परिवार को परेशान कर रहा है। तीन पीढ़ियां दुखी हो रही हैं एक एक क्रोध से। ऐसा बुरा है ये क्रोध, इसलिए सावधानी पूर्वक अगर गुस्सा आ भी जाए तो लाइट करो, अपने घर के माहौल को खुशहाली से भरो, हल्का करो हर चीज को। भाई लोग विशेष ध्यान देंगे तो बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, बहुत अच्छे अच्छे आपको परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि हमें ये एक बात जान लेनी चाहिए, अब एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात निगेटिव संकल्पों के बारे में। बहुत लोग बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझ सकते हैं सभी बच्चे, जो जीवन में कदम कदम पर असफलता का अनुभव करते हैं, जो ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लास्ट मोमेंट पर आकर असफल हो गए, कोई कहता है समय ने साथ नहीं दिया, कोई कहेगा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, लगता था बस अब ये हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पर आकर खेल बिगड़ गया। उन्हें जानना चाहिए असफलता का मुख्य बीज है निगेटिव विचार। निगेटिव विचार मनुष्य को अपने में विश्वास नहीं लाने देते, विश्वास नहीं करने देते। कईयों को बीमारी हो जाती है, कोई वो सोचते हम ठीक हो जाएंगे, दूसरा संकल्प रहता है अंदर ही अंदर, लगता है हम ठीक नहीं होंगे, कमजोर संकल्प रहता है। डॉक्टर भी कह देता है नहीं तुम ठीक हो जाओगे, मन में विचार रहता है अरे 10 डॉक्टरों को तो दिखा लिया, सब यही कहते थे तुम ठीक हो जाओगे, लगता है हम तो ठीक नहीं होंगे। बहुत कमजोर संकल्प है, निगेटिव संकल्प है। तो अपने मन से ऐसे कमजोर संकल्पों को निकालो। आज ही आप अपने जीवन के बारे में बैठकर विचार करें, हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारे संकल्प बीज हैं, ये संकल्प हमारे अंतर मन की खेती में चले जाते हैं। अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड है एक खेत, उसमें हमने ये बीज डाल दिए तो फसल कैसी मिलेगी, हमने कमजोर संकल्प डाल दिए कैसा फल मिलेगा, अशांति। हमने वैर भाव के बीज डाल दिए अपने अंतर मन में, अशांति मिलेगी। हमने बदले के विचार भर दिए अपने अंतर मन में, सुख होगा ही नहीं, तनाव ही तनाव मिलेगा। सभी ध्यान दें, जो कुछ हम सोच रहे हैं वो हम बीज डाल रहे हैं अपने जीवन की खेती में, उसका फल हमें मिलना ही है। बीज हम डाल रहे हैं तो अपने संकल्पों के बीज को सभी अच्छा करें, कमजोर संकल्प नहीं, निराशा के संकल्प नहीं, हतोत्साहित करने वाले भय के संकल्प, चिंताओं के संकल्प, परेशानियों के संकल्प, दुर्भावनाओं के संकल्प, बदला लेने के संकल्प, इन सभी को हटाते चलो। संकल्प हमारी पूंजी है, खजाना है ना बहुत बड़ा संकल्प। समझ लो जिसके पास जितने सुंदर संकल्प हैं वो उतना ही धनवान है। और एक धनवान व्यक्ति भी यदि कमजोर संकल्पों से ग्रसित है तो वो उतना ही निर्धन है। उसके जीवन में सुख संतोष प्रेम सम्मान ये सब नहीं मिलता है। लास्ट बात पर ध्यान दें, इस क्लास की लास्ट बात आपको कहता हूँ। हमारे यदि विचार कमजोर हैं, हमारे विचार यदि निगेटिव हैं, तो हमारा दूसरों पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, न हम सम्मान प्राप्त करेंगे दूसरों के द्वारा, न स्नेह न सहयोग। हम मांगते ही रहेंगे सदा, कोई हमें प्यार ही नहीं करता, सब ठुकराते हैं, सब नफरत की निगाह से देखते हैं हमें। ये हमारे अपने निगेटिव विचारों का रिफ्लेक्शन होता है। हम अपने विचारों को सुदृढ़ करें, अच्छा करें, और याद रखें जितना अच्छा हम सोचेंगे। देखो हमारे विचार, हम एक उदाहरण ले लें, गुंबज देखा है ना, गुंबज गोल गोल बना देते हैं ना, उसमें आवाज करो तो छत से टकरा के वापिस आती है ना। हमारे यहाँ आबू में भी ऐसी पहाड़ी है कई जगह, जोर से ओम शांति बोलो तो लगेगा उधर से भी ओम शांति बोली जा रही है, वो आवाज टकरा के वापिस आने लगती है फोर्स से। हमारे सुंदर विचार दूसरों के पास जाकर बहुत सुंदर होकर हमारे पास वापिस आ जाएंगे। हमारे निगेटिव विचार, हमारे वैर भाव ईर्ष्या के विचार दूसरों से टकरा कर डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाएंगे, उनकी भी मिक्स हो जाएगी ना उसमें। हमारे क्रोध के विचार दूसरे से टकराएंगे, उनके क्रोध के विचार मिक्स होकर डबल होकर हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए विचारों की सुंदरता पर ध्यान दें। सबसे बड़ा सौंदर्य, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ये सुंदर सुखद विचार हैं। स्वमन से हमें ये विचार प्राप्त होंगे। जैसे मैंने आपको कहा मिनिमम 10 पॉइंट ज्ञान के लिखें, ऐसे कम से कम 10 पॉइंट स्वमान के लिखें। हम विश्व कल्याणकारी हैं, गहराई में चले इसके। भगवान ने हमें काम दिया, बच्चे तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें संसार से माया की दुर्गंध को समाप्त करना है, तुम्हें संसार को पाप के बोझ से मुक्त करना है, तुम्हें संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देकर सबकी दुख शांति को नष्ट करना है। ये हमारा महान कार्य है। क्या हम किसी से वैर भाव रख सकते हैं? अंदर में चिंतन होगा उत्तर मिलेगा नहीं। तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें संसार को रोशन करना है, संसार के अंधकार को मिटाना है। तुम संसार में अंधकार कैसे पैदा कर सकते हो? अंदर से आवाज आने लगेगी। तुम्हें तो सब का क्रोध समाप्त कराना है, तुम स्वयं क्रोध की अग्नि में कैसे जल सकते हो? तुम्हें तो संसार में शांति स्थापित करनी है, तुम छोटी छोटी बातों में अशांत कैसे हो सकते हो? स्वमान हमारे विचारों को महान करेगा। सबसे अधिक ध्यान देंगे सभी, मैं बार बार कहता हूँ वो बात क्लास में, जो भी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कम से कम दिन में जिनको बहुत अच्छा अनुभव करना है, एक दिन में 10 बार याद करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। अपने अंतर मन में ये विचार भरने लगो सभी, बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। माताएं सुन रही हैं ध्यान से, हम कमजोर नहीं हैं। आप ये न कहें बहुत परिस्थिति आ गई है क्या करें, एक परिस्थिति जाती नहीं दूसरी तैयार रहती है, वो तो रहेंगी क्योंकि उसके बीज हमने बोए हैं। बोए हैं या नहीं? या किसी और की खेती से हम काट ले रहे हैं, ये हमारी अपनी खेती है। याद कर लो, इन सभी परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बार बार अपने को याद दिलाओ, शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, समस्या परिस्थितियों का फोर्स डाउन होता जाएगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। अब सभी इसी अभ्यास में बैठेंगे, सब गीत बजेगा, सभी योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की शक्तियाँ सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ आत्मा में समा की जा रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, आत्मा में समा रही हैं। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान।